ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के हमारे बुधवार के कार्यक्रम में। ठीक से दिखाई दे रहा है सबको? भगवद गीता के 25वें श्लोक तक हम पहुंचे हैं और भगवद गीता में कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं, तो हम आशा में हैं कि किसी दिन भगवद गीता के पूरे 700 श्लोक हम इस प्रकार से समझ पाएंगे। आज का श्लोक एक और बहुत विशेष श्लोक है जिसमें अब तक संजय धृतराष्ट्र को अपना आंखों देखा हाल सुना रहे हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। और आज के श्लोक में संजय कहते हैं, भीष्म द्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान कुरु इति। भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान कुरु इति। भीष्मद्रोण प्रमुखत सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। श्लोक के कुछ महत्वपूर्ण शब्द इस प्रकार से हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् कुरुनिति। तकरीबन पूरा ही श्लोक है क्योंकि एक एक शब्द या जो शब्दों का जोड़ है उसमें बहुत गहरा अर्थ संजय धृतराष्ट्र को और हमारे आचार्य हमें सिखा रहे हैं। तो इस श्लोक का अर्थ है भीष्म द्रोण प्रमुखतः। भीष्म और द्रोण जो प्रमुख कुरु सेना के योद्धा, इनके सामने भगवान ने रथ खड़ा किया। आपको यदि याद होगा कि अर्जुन भगवान को कहे कि मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, रथम स्थापय मे च्युत। तो भगवान ने अर्जुन के आदेशों का पालन किया, परंतु अर्जुन ने यह नहीं कहा था कि भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करो, केवल कहा था कि दोनों सेनाओं के बीच में। तो इसमें ये हम समझ सकते हैं कि हालांकि अर्जुन आदेश दे रहे हैं भगवान को, परंतु फिर भी भगवान भगवान ही है। वो जहां चाहेंगे वहां रथ खड़ा करेंगे, दोनों सेनाओं के बीच में, परंतु ऐसी जगह पर जहां पर अर्जुन की इच्छा नहीं थी। आगे चलकर अब अर्जुन की क्या इच्छा वो बताएंगे। अर्जुन की इच्छा नहीं थी कि इन दोनों के सामने मैं खड़ा हूं। इन दोनों के सामने तो भागने वाले हैं अर्जुन, भागने की इच्छा किए, भागेंगे तो नहीं, भगवान नहीं भागने देंगे। तो भगवान की इच्छा, और इसलिए भगवान की जो इच्छा है वो सर्वप्रथम होती है। तो भगवान ने भीष्म द्रोण प्रमुखतः और महीक्षिताम, इक्षिताम का अर्थ है इच्छा, जो इच्छा किए हुए हैं। मही का अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी को भोगने की जो इच्छा किए। कौन? भीष्म द्रोण। संजय ये बोल रहे हैं कि ये दोनों, और यदि ये दोनों जो प्रमुख हैं, ये महीक्षिताम, ये इच्छा किए हैं, तो सोचिए इनके साथ जो जो इकट्ठा हुए हैं उनकी तो तीव्र इच्छा है ही। किस बात के लिए? पृथ्वी को भोगने की इच्छा। और उवाच पार्थ, ये बहुत ही विशेष शब्द है या दो शब्द, इसकी चर्चा हम करेंगे कि भगवान ने पार्थ अर्जुन को कहा, और पश्यैतान कुरु इति, क्या कहा? पश्यैतान, पश्य का अर्थ है देखो, देखो कुरुन इति, ये सारे कुरु सेना को, सारे कुरुवंशियों को देखो हे पार्थ। तो ये इस श्लोक का अनुवाद है, एक एक इसका यदि हम विभाजित कर समझें एक एक शब्द को, परंतु इसके पीछे गहरा अर्थ एक एक शब्द का क्या है। सबसे पहले भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भगवान ने अर्जुन का रथ भीष्म और द्रोण ये प्रमुख योद्धाओं के सामने क्यों खड़ा किया? क्योंकि भगवान अर्जुन के हर एक कार्यकलाप के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। केवल भगवद गीता के जो श्लोक हैं, केवल उसी में जो ज्ञान है, वही केवल हमें अपनाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान अर्जुन के साथ कैसा व्यवहार किए, कहां पर रथ खड़ा किए, और शारीरिक रूप से रथ वहां पर खड़ा करने का प्रयोजन क्या था भगवान का, अर्जुन से ज्यादा हमें सिखाने के लिए। तो भीष्म और द्रोण ये प्रमुख जो योद्धा, इनसे सिखा रहे हैं जीव का वास्तविक युद्ध उसे अपने स्वयं के सबसे निकटतम एवं प्रमुख तत्वों के साथ लड़ना है। जैसे अर्जुन अब धीरे धीरे जब भीष्म और द्रोण इन दोनों को जब देख रहे हैं ध्यान से, तो धीरे धीरे अर्जुन के अंदर ये परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? कि मैं आया हूं यहां पर इन्हें मारने के लिए, परंतु मैंने कल्पना नहीं की थी कि मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। अर्जुन अब सामने जब आ रहे हैं, तब अर्जुन को समझ में आ रहा है कि ये युद्ध इतना आसान नहीं जितना मैं सोचकर आया। क्योंकि अर्जुन और भीम, बहुत बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के बारे में बोला था, युधिष्ठिर महाराज इतना युद्ध नहीं चाहते थे, परंतु भीम और अर्जुन बहुत ज्यादा फेवर में थे युद्ध के। तो अर्जुन अब सोच रहे हैं कि मैंने जो इतनी आसानी से मैं जो कह दिया भगवान श्री कृष्ण को युद्ध के विषय में, ये इतना आसान अब नहीं। क्योंकि यहां पर अब यदि हम अपनी तुलना अर्जुन से करें या जीव की तुलना अर्जुन से की जाए, तो हम भी इस प्रकार के द्वंद्व में खड़े हैं, इस दौराहे पर खड़े हैं जहां पर एक राह धर्म की है और एक राह अधर्म की। और यहां पर जैसे कि अर्जुन को युद्ध करना है जो सबसे प्रमुख योद्धा, और केवल वो प्रमुख योद्धा नहीं बल्कि अर्जुन के सबसे निकट भीष्म और द्रोण। इसलिए हमारी साधना भक्ति में, हमारे जीवन में भी हम यदि देखें तो बाकी सारे तत्वों से युद्ध करना, बाहरी तत्वों से युद्ध करना, बाहरी तत्वों का अर्थ है हमसे बाहर, जो हमसे इतने निकट से संबंधित नहीं है, उनसे जूझना इतना मुश्किल नहीं होता। परंतु जब हम साधना भक्ति में लगते हैं, और साधना भक्ति में हमें बताया जाता है कि हमारे अंदर ही जो सबसे प्रमुख और हमारे सबसे निकट, निकट क्यों? अनर्थ के विषय में बोल रहे हैं। निकट क्यों? क्योंकि इन्हें हमें हमने इनको कितने जन्म जन्मांतर तक इनका संग किया, इनको पाला पोसा। जैसे अर्जुन कितने समय तक भीष्म और द्रोण के साथ रहे, तो वैसे ही जब संघर्ष की बात आती है तो संघर्ष की पराकाष्ठा यहां अर्जुन के सामने है। वैसे एक साधक के सामने जब वो अपने स्वयं से लड़ने के लिए सामने खड़ा होता है तो वो सबसे ज्यादा कठिन युद्ध उस साधक का होता है। तो इसलिए हमें ये नहीं समझना चाहिए कि बैठे बैठे हम देख रहे हैं, हाँ अर्जुन बिचारे अब उनकी स्थिति ठीक नहीं, प्रमुख और निकट योद्धा के सामने वो खड़े हैं। हम साधना भक्ति में भी उसी स्थिति में खड़े हुए हैं, अर्जुन की स्थिति में, हमारे स्वयं से युद्ध कर रहे हैं। और इसमें यदि हम लें भीष्म और द्रोण को, तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की तुलना की गई है अर्जुन के पारिवारिक आसक्ति और देह एवं कला आसक्ति इन दोनों से। अब देखिए भीष्म पितामह वो संबंधित थे अर्जुन से, पितामह थे वो, और अर्जुन भीष्म पितामह से कभी एक योद्धा के रूप में व्यवहार नहीं किए। अर्जुन हर समय भीष्म पितामह से एक पितामह के रूप में ही व्यवहार किए और वो स्वयं एक पौत्र के रूप में उनसे। इसलिए यहां पर जब वो भीष्म की तरफ देख रहे हैं या भगवान अर्जुन को भीष्म देव को दिखा रहे हैं, तो भगवान अर्जुन के द्वारा हमें दिखा रहे हैं कि जब हमारी साधना में हमें इस स्थिति में आना होगा तो एक आसक्ति जो हमारे सामने आएगी वो होगी पारिवारिक आसक्ति। और बहुत गहरी ये आसक्ति अर्जुन के अंदर थी भीष्म पितामह के प्रति, और हम भी कह सकते हैं कि जो पारिवारिक आसक्तियां होती हैं ये बहुत गहरी होती हैं। हालांकि यदि कृष्ण मध्य में है तो वह पारिवारिक आसक्ति आध्यात्मिक है, परंतु यदि भगवान श्री कृष्ण मध्य में नहीं है तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार वो पारिवारिक आसक्ति यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स एव गोखर कहा गया है। वो केवल जैसे पशुओं की आसक्ति होती है अपने शरीर और शरीर से संबंधित जो कुछ है उससे, उस प्रकार की वृत्ति पशुवत वृत्ति है। और ये जो दूसरी आसक्ति अब सामने अर्जुन के है, देह एवं कला, ये कैसे समझोगे आप? द्रोणाचार्य से कैसे संबंधित है अर्जुन की देह और कला की आसक्ति? क्योंकि द्रोणाचार्य ने युद्ध की कला सिखाई अर्जुन को। तो अपने जीवन में यदि हम देखें तो हम सब किसी न किसी कला के साथ पैदा हुए हैं। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा गा सकता है, कोई अच्छा नाच सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है, बहुत सी कलाएं होती हैं। किसी के अंदर बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है कि तुरंत, कई ऐसे होते हैं जिनकी स्मृति बहुत तेज होती है, बुद्धि नहीं होती परंतु स्मृति बहुत तेज होती है। जानवरों में भी देखा जाता है बहुत स्मृति तेज होती है। तो हम किसी न किसी कला के साथ पैदा हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बिना किसी कला या गुण के पैदा हुआ, ऐसा कोई नहीं। इसलिए कई बार हमें यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे अंदर कोई गुण ही नहीं है। कई बार हमें लगता है कि यह नम्रता है, इसको हम ह्यूमिलिटी मानते हैं कि मेरे अंदर तो कोई गुण भगवान ने नहीं डाले। इसका अर्थ भगवान में इतनी शक्ति नहीं कि भगवान हमारे अंदर कोई गुण डाल सके। तो इसमें एक प्रकार से भगवान का अपमान हो रहा है कि उन्होंने एक ऐसा चीज बनाया जो बिल्कुल फालतू। हम अरे भगवान ने हमको बनाया है तो भगवान का ये गुणगान है कि भगवान ने कुछ कला हमारे अंदर डाली है। और वो कला जब भगवान की सेवा में हम उपयोग में लाते हैं, तब जाकर उस कला का जो असली उद्देश्य है वो सिद्ध होता है। तो जब हम किसी कला के साथ पैदा होते हैं या फिर किसी कला को सीखते हैं तो उसके प्रति आसक्ति जागृत होती है कि नहीं। धीरे धीरे जैसे हम उस बचपन में पता नहीं लगता, जैसे बचपन में कोई बालक बहुत सुंदर है और सभी उसे इतना प्रेम करते हैं, सभी उसे छूना चाहते हैं, सभी उसे उसका लाड़ करना चाहते हैं। अब उसे पता नहीं कि वो इतना सुंदर है, परंतु सभी लोग उसका फोटो खींचते हैं और क्या क्या नहीं करते, नजर नहीं लग जाए लगा देते हैं उसको। और धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, जब उसे पता लगता है कि अरे भाई ये लोग सब इतना मेरे इर्द गिर्द घूमते हैं क्योंकि मैं सुंदर हूं, तो धीरे धीरे अब वो उस सुंदरता का भूत उसके अंदर घुसता है, आसक्ति कि मैं सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं। वो बच्चा जब छोटा होता अपने आप को आईने में भी देखे तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या है कौन, परंतु धीरे धीरे जब वो आईने में देखना, उसका समय बढ़ता रहता आईने के सामने, पहले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर कई घंटे बीतते हैं फिर आईने के सामने, और आईना सामने भी ना हो फिर भी कल्पना करते हैं कि वो व्यक्ति मुझे अभी देख रहा है, कैसे देख रहा होगा, मैं कैसे दिख रहा हूंगा। तो धीरे धीरे उसमें आसक्ति जागृत होती है, कोई भी गुण या कला हो उसमें आसक्ति जागृत होती, और उस आसक्ति के बलबूते पर हम फिर जन्म जन्मांतर घूमते रहते हैं। किसी न किसी योनि में कोई ना कोई आसक्ति, कोई ना कोई कला तो है, और फिर आसक्ति जागृत होती है। चाहे कोई चींटी भी क्यों ना हो उसमें भी कला है, जो कहीं पर भी घुस सकती है, कहीं से भी निकल सकती है। और चींटी एक हाथी को पागल बना सकती है, ऐसी कला है चींटी के अंदर, वो उसके सूंड में घुस जाए वो हाथी कुछ नहीं कर सकता, इतना इतना विशाल काया उस हाथी की, कुछ नहीं कर सकता हाथी। तो हर एक योनि में ये जो कला हम प्राप्त करते हैं, इसके साथ इसका बाय प्रोडक्ट क्या है, आसक्ति। उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आसक्ति के कारण फिर से जन्म लेना है और जन्म का फिर वो श्रृंखला चालू होती। तो यहां पर अब अर्जुन के सामने द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने अर्जुन को सारी युद्ध कला सिखाई, तो अर्जुन अब इस आसक्ति को कैसे जूझते हैं द्रोणाचार्य के सामने, क्योंकि अर्जुन के मन में यह बात आ रही है कि ये आचार्य जिन्होंने मुझे सारी कला सिखाई, इनको मैं कैसे मार सकूं, यदि मैं इन्हें मारता हूं, यदि श्राप मिल जाए तो जितनी कला मैंने सीखी ये सारी कला सब निष्फल हो जाएगी। परंतु वास्तविक रूप में कला द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाई, ये सारी कला आ रही थी कृष्ण से, क्योंकि भागवत में वर्णन है कि वही अर्जुन, वही रथ, वही गांडीव भगवान श्री कृष्ण जब अंतर्धान हो जाते हैं, अपने धाम चले जाते हैं, तो अर्जुन वही रथ और गांडीव और वही कला को लेकर कुछ साधारण से गांव वाले, उनसे नहीं जीत पाते अर्जुन, उनसे हार जाते हैं। तब वो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि अब मैं समझ गया कि उस युद्ध में वास्तविक रूप में कौन सेनाओं को परास्त कर रहा था और कौन वो युद्ध जीता, भगवान श्री कृष्ण। तो हमारी साधना भक्ति में या हमारे मनुष्य जीवन में भी हमें ये जो दो आसक्तियां हैं इसमें ठीक ठीक पहले तो अंतर कर लेना है, क्योंकि एक एक आसक्ति बड़े बड़े पर्वत के समान है पार करना, हमारी देह की, कला की, और फिर पारिवारिक आसक्तियां। यदि ये दो बड़े बड़े पर्वत या इसे ट्विन टावर यदि हम कहें, जैसे कल WTC क्रैश हुआ था, जो दो बड़े बड़ी इमारतें उड़ाए गए थे, तो वैसे ये जो दो बड़े बड़े पर्वत आसक्तियां हैं हमारी साधना भक्ति में, इसके प्रति हमें सबसे पहले उनको उसको जानना है, परखना है, और फिर जैसे भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को मिला जूझने के लिए। अब अर्जुन की दुविधाएं देखिए, भगवान ने ऐसा नहीं कि अर्जुन को चिढ़ाने के लिए भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा किया, भगवान ऐसा नहीं कि अर्जुन को चिढ़ाना चाहते थे, देखो देखो तुम यहां पर किसे मारने के लिए खड़े हुए हो और तुम्हें मारने के लिए कौन खड़ा हुआ देखो, नहीं। अर्जुन की दुविधा यदि हम देखें, जब उन्हें लड़ना था तब उन्हें अनुमति नहीं मिली, कब, कौन सी ऐसी स्थिति थी जब अर्जुन को लड़ना था और मना किया गया अर्जुन को? हाँ, द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय भीम और अर्जुन वहीं पर सबको भूमि शस्त्र देने वाले थे। भूमि शस्त्र समझते हैं ये आर्म्ड फोर्सेस में जब जितने भी शस्त्र होते हैं, जब शस्त्र इस्तेमाल नहीं किए जाते तो उनको जब लेटाया जाता है तो उन्हें भूमि शस्त्र बोलते हैं कि अब कोई वो शस्त्र काम के नहीं, वो लेटाए गए हैं। तो अर्जुन अपने शस्त्रों से सभी को वहां पर, भीम और अर्जुन दोनों मिलकर सबको लेटा सकते थे, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को रोक दिया, नहीं। तो उस समय अर्जुन जो इतना लालायित थे युद्ध के लिए, वहां पर लड़ने के लिए, तब अर्जुन को मना किया गया। और अब हम देखेंगे कि सारी योजना की गई है, सारी सुविधाएं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं अर्जुन, ये अर्जुन के लिए विशेष रूप से, क्योंकि सर्वप्रथम सर्वोच्च योद्धा पूरे 64 करोड़ योद्धाओं में अर्जुन प्रमुख है। परंतु अब अर्जुन की स्थिति ऐसी है, तनिक भी इच्छा नहीं उस युद्ध को लड़ने की। तो ये जो स्थिति है, इस श्लोक की जो स्थिति है अर्जुन की, जब अर्जुन भीष्म और द्रोण के सामने अब कोई इच्छा नहीं रख रहे युद्ध करने की, तो इस स्थिति में हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि भौतिक संसार का नियम, यहां तक कि भगवान अर्जुन को भी माध्यम बनाकर भौतिक संसार का नियम हमें सिखा रहे हैं। क्या नियम? बहुत बार हमने सुना है ये नियम, कोई बोल सकता है कौन सा है ये नियम जो हम हर क्षण कई बार अनुभव करते हैं, कई बार पूरे जीवन भर इस नियम को अनुभव करते हैं? जो चाहिए वह मिलता नहीं और जो नहीं चाहिए वह छूटता नहीं। जब अर्जुन को युद्ध चाहिए था तब नहीं मिला, अब युद्ध नहीं चाहिए तो इतनी बड़ी व्यवस्था युद्ध की। तो भगवान अर्जुन के द्वारा ये भौतिक संसार का नियम सिखा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि कोई मुझे आकर भेंट दे, ये एक अंग्रेजी की कहावत है, उसको मैं हिंदी में अनुवादित कर बोल रहा हूं। यदि कोई मुझे कंघी लाकर भेंट दे, तो देखिए आप इस बात को सुन के हंस रहे हैं कि मान लो कोई मेरे बर्थडे के दिन मुझे कंघी लाकर भेंट दे, ये कंघी आपके लिए, ये अंग्रेजी में कहावत है, लाइफ इन दिस मटीरियल वर्ल्ड इज दैट यू आर ऑफर्ड अ कॉम्ब व्हेन द मटीरियल नेचर टेक्स अवे ऑल योर हेयर्स। तो जब कुछ चाहिए, जब बहुत बाल थे तब कोई कंघी लाकर दिया नहीं, जब सब सवार नहीं थे, जैसे यदि अब दांत सारे टूट गए, अब गन्ना लाकर कोई दिया, खाओ गन्ना खाओ बहुत मीठा है, तो जब दांत थे तब गन्ना नहीं था, अब गन्ना है लेकिन दांत नहीं है। तो भौतिक संसार का नियम इसी प्रकार से होता है, जैसे कि युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था, कि युवा अवस्था में इतनी शक्ति होती है भोग विलास करने की और आनंद भोगने की, परंतु समय नहीं होता, क्योंकि इतना कुछ करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। और जब सारा पैसा वगैरह कमा लिया और एकदम अब सारा समय है, तब शरीर काम नहीं देता भोग विलास करने के लिए। तो ये इसे अंग्रेजी में कहते हैं डाइकोटमी, ये जो दुविधा है इस भौतिक संसार का, ये जो नियम है, और इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। ये नहीं कि हम अपने किसी प्रयास से इस नियम को हम बदल पाएंगे। जैसे कि ध्रुव महाराज की कथा आपने सुनी होगी, ध्रुव महाराज वो अपमानित हुए और उस गुस्से में क्रोध में उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा राज्य प्राप्त करके दिखाऊंगा। इतनी तीव्र इच्छा थी उनकी, वो सांप की तरह फुफकार रहे थे ध्रुव महाराज जब उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, छोटे से 5 साल के। और उस समय 5 साल का क्षत्रिय भी यदि प्रतिज्ञा लेता है तो उसे पूरा कर रहता है, सत्ययुग की बात। आजकल तो 5 साल में हमने क्या किया, क्या प्रतिज्ञा ली, बड़े बड़े प्रतिज्ञा लेते वो भी फिर भूल जाते हैं, छोड़। अरे क्या कल कुछ बोला था, ठीक है आज आज दूसरा दिन है। तो ध्रुव महाराज उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य वो हासिल कर दिखाएंगे, और जब ध्रुव महाराज को भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान के दर्शन के पश्चात अब ध्रुव महाराज ने सोचा कि मैं क्या मांग रहा था, क्या मैंने इच्छा की थी। ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं केवल कुछ टूटे हुए कांच उसके पीछे भाग रहा था, ये अनमोल हीरा मुझे मिल गया, भगवान स्वयं और उनकी भक्ति। तो अब ध्रुव महाराज भगवान से कहते मुझे नहीं चाहिए। जब भगवान आए हैं देने के लिए वो कहते नहीं चाहिए मुझे, भगवान कहते नहीं अब तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज की स्थिति में क्या देखते हैं कि जब वो अपमानित हुए तब वो उस स्थिति में नहीं थे, क्यों, यही सोच रहे थे कि यदि मैं इतने ऐश्वर्य में पैदा होता तो आज मैं अपमानित नहीं होता। तो तब जो उनके पास नहीं था और जब उनके मिलने को आया तब उनकी इच्छा चली गई। अर्जुन की भी स्थिति ऐसी, अब जब सारा युद्ध सामने है तो अब इच्छा नहीं युद्ध की। तो हम यदि भागवत के ऐसे ऐसे उदाहरण लेकर देखें तो ये सारे उदाहरण हमें सिखाने के लिए है कि हमें इस भौतिक संसार में अपनी तरफ से यदि हम कोई भौतिक योजनाएं बनाते हैं, जैसे एक व्यक्ति के टी शर्ट पर मैंने पढ़ा था मुंबई में, उस पर अंग्रेजी में लिखा था इफ यू वॉन्ट टू मेक गॉड लाफ टेल मी योर प्लान्स, अगर भगवान को हंसाने की इच्छा है तो अपनी योजनाएं बताओ भगवान को कि मैंने ये सब प्लान किया है, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके रखा है। जैसे कोई बड़ा बॉस, उसने ऑलरेडी सस्पेंशन लेटर या आपको बाहर से निकालने का नोटिस वो ऑलरेडी रेडी कर दिया है, और आप जाकर अपने बॉस को बोलो मेरा प्रमोशन इंक्रीमेंट, तो बेचारा बॉस बोलेगा पहले इसको पढ़ो प्रमोशन इंक्रीमेंट। तो वैसे ही ये भौतिक संसार का नियम ये अर्जुन के द्वारा भगवान हमें सिखा रहे हैं। अब अगला शब्द इस श्लोक का महीक्षिताम, इक्षिताम का अर्थ है इच्छा करना, मही के 3 अर्थ बताए गए हैं, पृथ्वी, शरीर और विस्तारित शरीर, महीक्षिताम। तो यहां पर संजय बोल रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को कहा, संजय कह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले श्लोक में ऋषिकेश, भगवान को ऋषिकेश और अर्जुन को गुड़ाकेश, ये दोनों शब्द से पुकारा था संजय ने। तो अब इस श्लोक में भगवान का नाम नहीं लिया गया, केवल उवाच पार्थ कहा गया है। तो अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन देखो महिक्षिताम, ये इच्छित, इतना इच्छा रखने वाले ये भीष्म द्रोण और अन्य किस इच्छा से? मही, तो सबसे पहले पृथ्वी को भोगने की इच्छा से कि ये सारे पृथ्वी को भोगना चाहते हैं। और ये पृथ्वी है कौन? ये मेरी अर्धांगनी, भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगनी है पृथ्वी देवी। जब वराह के रूप में भगवान अवतरित हुए तो भगवान ने पृथ्वी देवी को गर्भोदक सागर से बाहर निकाला और उसके पश्चात पृथ्वी देवी के साथ विवाह हुआ भगवान का। तो भू वराह, ये वराह देव और भू देवी। तो यहां पर मानो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये रावण वृत्ति, रावण की वृत्ति क्या थी? कि सीता का भोग करना चाहता था रावण, जो कि भगवान श्री राम की अर्धांगनी पत्नी। तो जो भी मही इक्षताम है वो रावण की वृत्ति वाला है, कि जो इस पृथ्वी को केवल अपने लिए भोगना चाहता है। जैसे आज ही मैं सुन रहा था कि कोई समाचार मिला है कि वो पृथ्वी के एकदम मध्य तक जाना चाहते हैं वैज्ञानिक, खोद खोद कर। पहले ऊपर जाने का प्रयास किया, उधर कुछ मिला नहीं, उधर से केवल कुछ पत्थर लेके आए। तो अब सोच रहे हैं कि इसके नीचे कुछ मिलेगा। अरे उधर ऊपर से केवल पत्थर मिला, यहां से और क्या मिले? और तो पृथ्वी के बीच में जाना चाहते हैं और वहां जाकर कुछ ऊर्जा पैदा करेंगे ताकि उस ऊर्जा से फिर कभी ये सब इनका इनके प्रयोजन होते हैं कि फिर कभी मनुष्य समाज को ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं होगा, लोड शेडिंग कभी। और वो इलेक्ट्रिसिटी से करेंगे क्या? आहार निद्रा भय मैथुन, फिर से जानवरी कार्य। तो इसे कहते हैं मही इक्षिताम। आज ही हाल ही में, आज ही के पेपर में आया, बोलते मही इक्षिताम। तो पृथ्वी का भोग करने की इच्छा। और ये जो शरीर है ये भी पृथ्वी का अंश है। हम जो इस अर्थ पर हैं, पृथ्वी पर हैं, तो सबसे ज्यादा ये जो पृथ्वी का अंश है हमारे शरीर के ऊपर, बाकी सारे जो हैं जल अग्नि वायु ये कम मात्रा में है, परंतु पृथ्वी का अंश सबसे ज्यादा। तो इस पृथ्वी के अंश को भोगने की इच्छा भी मही इक्षिताम। तो यहां पर भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि ये केवल पृथ्वी का भोग नहीं बल्कि अपने शरीर का भोग करने के लिए खड़े हुए हैं। तो भगवान धीरे धीरे अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केवल अपने शरीर और विस्तारित शरीर, विस्तारित शरीर का अर्थ क्या होता है कि जो शरीर से संबंधित हो और उस संबंध के द्वारा शरीर को भोग मिले, उसे कहते हैं विस्तारित शरीर। भागवत में भगवान स्वयं इस श्लोक को कहे हैं, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्री धातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्यधि यत्तीर्थ बुद्धि सलिलेन करहिचित जनेशु अभिग्नेशु स एव गोखर। गोखर का अर्थ है गधा और गाय। हालांकि गाय बहुत शुद्ध प्राणी है, परंतु यहां पर प्राणी एक जानवर के विषय में बताया गया है कि एक पशुवत वृत्ति किसकी बताई गई। अब देखिए स्टैंडर्ड भागवत का देखिए, पशुवत वृत्ति किसकी बताई गई है कि जो अपने शरीर, ये जो कुणप, ये जो शरीर है तीन तत्वों से बना हुआ कफवात पित्त, तो ये जो त्रिधातु से बना हुआ ये शरीर, इसको जो अपना स्वयं अपनी अपना अपनी पहचान मानता है वो पशुवत वृत्ति का, जो जहां पैदा हुआ है उस जन्म स्थान को बहुत पूजनीय मानता है कि मैं जिस स्थान पर पैदा हुआ बहुत पूजनीय स्थान है, ये भी पशुवत वृत्ति है। और जो तीर स्थान में जाता है केवल डुबकी लगाने के लिए, ना आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए, वो भी पशुवत वृत्ति। तो यहां पर यदि आप लोग मातृभूमि प्रेम, देश भूमि प्रेम या शरीर का प्रेम, ये सब जो जिसको प्रेम लगा दिया गया है वो प्रेम नहीं, भागवत के अनुसार पशुवत वृत्ति है वो। क्योंकि ये सब व्यक्ति केवल अपने शरीर से संबंधित मान रहा है। जैसे कि अब ये जो आत्मा है, ये आत्मा अभी इस शरीर में गया है जो कि शरीर भारत में पैदा हुआ। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इतना द्वेष और इतना द्वंद्व चल रहा है, तो अब भारतीय जो इतना सोचता है पाकिस्तानी के बारे में द्वेष के कारण, तो सोचते सोचते यदि वो मरेगा तो कहां पैदा होगा? पाकिस्तान में पैदा होगा। और वो भारत और भारतीय के विषय में इतना द्वेष कर रहा है, सोचते सोचते मरा, वो इधर पैदा होगा, फिर से वही चालू होगा। ये उधर पैदा हुआ वहां से बंदूक लेकर खड़ा हो जाएगा, और ये यहां पैदा हुआ यहां से बंदूक लेकर वहां खड़ा हो जाएगा। इसे कहते हैं स एव गोखर, पशुवत वृत्ति, कि ये मेरा देश, ये पराया देश, वो तो छोड़ दीजिए, अभी तो अपने स्वयं के देश के अंदर ये मेरा राज्य, ये नदी यहीं पे, इसका पानी वो राज्य को नहीं मिलना चाहिए। अब यदि दोनों को जाके पूछें, तुम दोनों ने पानी किया अपने साथ लाए थे पैदा होके, ये नदी लाए थे अपने साथ? तो यहां पर भगवान अर्जुन को एक बहुत ब्रॉड व्यू दे रहे हैं, विस्तारित दृष्टिकोण दे रहे हैं। अर्जुन को बता रहे हैं कि ये सभी जो खड़े हैं ना, ये मत समझना कि ये केवल तुम्हें मारने के लिए खड़े हैं। मही इक्षिताम का अर्थ है कि तुम्हें मारने के बाद इस पूरी पृथ्वी को भोगना चाहते हैं, और ये समझो कि मैं तुम्हें यहां पर क्यों खड़ा किया हूं, केवल इन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि इस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए। तो भगवान केवल एक शब्द से अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारे यहां खड़े होने का प्रयोजन क्या है और उनके खड़े होने का प्रयोजन क्या है। मही इक्षिताम इस शब्द से आगे उवाच पार्थ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गहरा अर्थ है इसके पीछे। उवाच पार्थ से हमें इस श्लोक के द्वारा यह सिखाया जा रहा है कि भगवद गीता के प्रथम अध्याय की प्रामाणिकता क्या है। समझ में आया आपको? नहीं? ऐसा है कि बहुत से लोग भगवद गीता के पहले अध्याय को भगवद गीता का भाग नहीं मानते। बहुत लोग, बहुत से टीकाकार, बड़े बड़े विद्वान, दार्शनिक, वो कहते हैं कि भगवद गीता का जो पहला अध्याय है वो तो केवल अर्जुन का विषाद है, इसलिए अर्जुन विषाद योग ये उसका नाम है। क्योंकि यदि भगवद गीता इस टाइटल को आप लो, उसका अर्थ क्या है? भगवान का गीत। तो वो कहते हैं कि भगवान ने तो एक श्लोक नहीं कहा, पहले अध्याय में एक श्लोक नहीं कहा, तो फिर वो भगवद गीता का भाग कैसे हो सकता है? भगवद गीता का अर्थ है भगवान द्वारा कहा गया गीत। तो इसे अब सिद्ध करने के लिए कि कैसे भगवद गीता का पहला अध्याय भी भगवद गीता का भाग है, उवाच पार्थ, संजय क्या कह रहे हैं कि उवाच का अर्थ है ऋषिकेश, क्योंकि इसके पहले श्लोक में ऋषिकेश कहा है भगवान को, तो ऋषिकेश, और इस श्लोक में उवाच, तो ऋषिकेश उवाच, तो ऋषिकेश ने कहा किससे? पार्थ से। अर्थात पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ है, केवल संजय उसे दोहरा रहे हैं। अब पार्थ पश्यैतान कुरुन इति, ये जो अंतिम जो दो शब्द हैं पश्यैतान कुरुन इति, यहां पर अर्जुन की परीक्षा, अर्जुन की परीक्षा की घड़ी है कि अर्जुन को इन दोनों विशेष रूप से भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया गया प्रमुखतः। तो अर्जुन की परीक्षा की घड़ी यहां पर भगवान, देखिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं पार्थ और कहते हैं इन कुरुओं को देखो। अब अर्जुन है कौन? अर्जुन भी कुरु है। तो भगवान ये भी कह सकते थे कि हे कुरु इन अन्य कुरुओं को देखो, परंतु यहां पर भगवान ने विशेष रूप से अर्जुन को कहा पार्थ, और कहा पार्थ पश्य एतान कुरुनिति, देखो इन कुरुओं को सामने। इसका अर्थ है, अच्छा अर्जुन को यह पार्थ नाम कैसे मिला तब समझ में आएगा, कोई जानता है? अर्जुन का एक नाम पार्थ है, जानते हैं आप लोग? वहां से शुरू करते हैं। हाँ, और प्रथा कौन है? और माता कुंती का रिश्ता कृष्ण से क्या है? हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हुए, कुंती पुत्र या प्रथा पुत्र या पार्थ। तो यहां पर भगवान अर्जुन को अपना संबंधी मानते हुए ये शब्द बोल रहे हैं, ये नाम पुकार रहे हैं, ताकि अर्जुन भगवान की तरफ देखे और अपना रिश्ता याद करे भगवान से। कौन सा रिश्ता? यहां पर तो केवल ये एक रिश्ते संबंध का, अपने पारिवारिक रिश्ता, और उसके सामने कुरु भी बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का रिश्ता कुरुवंश से भी है। तो भगवान अर्जुन को मानो पार्थ और कुरुनिति, ये दोनों शब्द बोलते हुए अर्जुन के सामने ये परीक्षा रख रहे कि अब मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम मेरे पक्ष में हो, क्योंकि तुम्हारा एक नाम पार्थ है, या तुम कुरु के पक्ष में हो, क्योंकि तुम्हारा एक नाम कुरु भी है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं पार्थ कुरुनिति। तो अर्जुन को इस परीक्षा की घड़ी में भगवान रख रहे हैं कि किसका चुनाव तुम करोगे, तुम मेरे लिए लड़ोगे या इनके लिए भागोगे युद्ध भूमि छोड़कर। तो इसलिए एक एक शब्द के पीछे भगवान का तात्पर्य है गहरा कहने का। तो ये परीक्षा की घड़ी अर्जुन की, कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण को चुनना है या कुरुओं को चुनना है। अच्छा, इसके पश्चात अब हम अंतिम शिक्षा क्या लेते हैं कि यदि जीवात्मा की तुलना अब अर्जुन से की जाए तो हम सब ऐसी परीक्षाओं की घड़ियों में खड़े रहते हैं कई बार, जिसमें हमें भी चुनाव करना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण या फिर जो जो हमारी आसक्तियां हैं, देह आसक्ति, हमारी कला से आसक्ति, पारिवारिक आसक्ति, इतनी सारी आसक्तियां हैं। परंतु यहां पर क्योंकि स्थिति यह है कि अर्जुन का रथ खड़ा हुआ है बीच में, और वो भी इन दोनों के सामने, भीष्म द्रोण प्रमुखतः। तो यदि हम रथ को लें अर्जुन के, तो अर्जुन के रथ को भगवान हाँक रहे हैं, तो अर्जुन के रथ को भी हांक रहे हैं और अर्जुन को भी हांक रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि अर्जुन रथ के ऊपर है। तो यहां पर भगवान हमारे देह के रथ को और हमारे मन के रथ को, इन दोनों के सारथी वही भगवान है। जैसे अर्जुन के रथ के और अर्जुन के भी सारथी भगवान। अर्जुन के सारथी कैसे भगवान बने? अर्जुन के रथ के नहीं पूछ रहा मैं, अर्जुन के सारथी। जैसे हां भगवत गीता का जो ज्ञान दिया, तो भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया, इसलिए पार्थ सारथी का अर्थ है केवल पार्थ रथ सारथी नहीं, पार्थ के रथ का सारथी केवल नहीं, बल्कि स्वयं पार्थ के जीवन के सारथी भगवान बने। वैसे ही यदि हम अपने जीवन में भगवान को अपने जीवन का सारथ्य देते हैं, तो एक तो है ये रथ हमारा देह, इसे भी भगवान के हाथ देना है हमें कि आप चलाइए इसे, और मनोरथ। इसलिए ये मनोरथ आपने बहुत बार सुना होगा कि मेरा मनोरथ है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, है ना? ये मनोरथ का अर्थ क्या है कि मन रूपी रथ के ऊपर बैठकर मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की ओर इस रथ को ले जाना चाहता हूं। तो परीक्षा की घड़ी होती क्या है हमारी साधना भक्ति में, जब हम अपनी तुलना यदि अर्जुन से करें, तो ये जो देह रूपी रथ है ये तो और ही कोई इसका बागडोर संभाले है, और ही कहीं किसी और ही दिशा में जा रहा है ये देह रूपी रथ हमारा, क्योंकि ये सारी इंद्रियों को हम किसी और की सेवा में लगाए हुए हैं, और मन तो खैर उसके विषय में तो क्या कहना, ये मन तो पता नहीं कौन से रथ पर बैठकर कितनी तेजी से किस दिशा में हमें ले जा रहा है। इसलिए हम देखते हैं कि जब हम साधना में लगते हैं तो इस देह रूपी रथ को तो लाते हैं, मंदिर में लाते हैं, इस देह रूपी रथ को पार्क करते हैं, प्रोग्राम में लाकर इसको पार्क करते हैं, हाँ, परंतु मन रूपी रथ क्या उसे हमने पार्क किया है भगवान के चरणों में? ये प्रश्न पूछना चाहिए। जैसे कि अर्जुन का रथ तो भगवान ने इन सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, परंतु अर्जुन का मन अब तक नहीं वहां पर खड़ा हुआ है। अर्जुन का मन उस रणभूमि से बाहर जाने पर है। तो यहां पर भगवान देखिए दोनों का सारथ्य कर रहे हैं, और विशेष रूप से अर्जुन के मन का, जो अब करेंगे पूरी भगवद गीता सुनाकर। तो हमारी जो परीक्षा की घड़ी है, इन दोनों रथों को सही दिशा में जब तक हम नहीं लाएंगे, तब तक परीक्षा में हम उत्तीर्ण तो दूर की बात है, पासिंग मार्क भी नहीं मिल रहे। इसलिए देह रूपी रथ को भगवान की सेवा में, हमारी इंद्रियों को, आंखों को, हाथों को, सभी पूरे शरीर को शारीरिक रूप से भगवान की सेवा में लगाना, इसमें हम इस परीक्षा से पास होंगे। और मन को कैसे लगाना? महामंत्र में ध्यान पूर्वक उसका जप करते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सारांश आज के इस श्लोक का ये कि भगवान पार्थ से कह रहे हैं कि तुम इन कुरुओं को देखो और चुनाव करो कि तुम्हें अपना परिचय कुरु के साथ देना है या मेरे साथ। और फिर ये जो मही इक्षिताम यहां पर खड़े हैं, इनकी इच्छा सब भोग करने की, और तुम्हारी इच्छा मैं जो जागृत करना चाहता हूं पृथ्वी की रक्षा करने की, वो दोनों में द्वंद्व। और फिर अंततः भगवान ये कह रहे हैं कि तुम्हें अब मैं न केवल तुम्हारा रथ हाँकने वाला हूं, बल्कि तुम्हारा मनोरथ भी मैं हाँकने वाला हूं। और यहां से अब अर्जुन वो धीरे धीरे अब उस मोड़ में जाएंगे जहां पर भगवान प्रेरित होंगे भगवद गीता सुनाने के लिए, और अर्जुन के मन के रथ को हांकने के लिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? आज थोड़ा समझ में आ रहा था ना कि इसलिए उसकी बागडोर भगवान के हाथ में देनी है, जो कि हम हमारे भी सारथी बनने के लिए भगवान तैयार हैं। यदि हम बागडोर दें, वो लगाम दें हमारे देह और मन रूपी रथ की। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदी महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव